Jaya Jagannatha, Jai Jagannatha, Baladeva Jai Subhadra. Jai Jai Prabhupad, 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 Jai Jai Prabhupad. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय English or in Hindi? Is the coordinator here? कितने भक्त हिंदी में सुनना चाहते हैं? Signature provided. You don't understand English? Okay, प्रभु जी की खुशी के लिए आज मैं हिंदी में बोलूंगा. तो आज हम श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंध से पढ़ रहे हैं, अध्याय 26 और 15वां श्लोक. ये बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है क्योंकि इसमें चैतन्य महाप्रभु की लीला का, संन्यास लीला का वर्णन. वैसे हर लेक्चर में गौर लीला बोलता ही हूँ, लेकिन इसमें परपोट में ही गौर लीला है तो ऑथराइज हो जाता है. फोर्थ कैंटो 26 चैप्टर. मैं पहले इसका इंग्लिश में अनुवाद पढ़ूंगा फिर हिंदी में. प्रभुपाद जी के डायरेक्ट शब्द. न तथैरेति रोचन्ते गृहेषु गृहसंपदा यदि न स्यात् गृहे माता पत्नी वा पतिदेवता व्यंगे रत इव प्राज्ञा को नामासीत दीनवत् न तथैरति रोचन्ते गृहेषु गृहसंपदः यदि न स्यात् गृहे माता पत्नी वा पतिदेवता व्यंगे रत इव प्राज्ञा को नामासीत दीनवत् न तथैरति रोचन्ते गृहेषु गृहसंपदा यदि न स्यात् गृहे माता पत्नी वा पतिदेवता व्यंगेरत इव प्राज्ञा को नामासीत दीनवत्
Oh,
माता जी नॉट तथा लाइक बिफोर ए तरी एट दिस मोमेंट रोचन्ते बिकम्स प्लीजिंग गृहेशु एट होम गृह संपदा ऑल हाउस होल्ड पेरिफेरनेलिया यदि इफ न नॉट स्यात् देर इज गृहे एट होम माता मदर पत्नी वाइफ वा और पति देवता डिवोटेड टू द हस्बैंड व्यंगे विदाउट व्हील्स रथे इन अ चैरियट इव लाइक प्राज्ञा लर्नेड मैन क हु इज दैट नाम इंडीड आसित वुड सिट दीनवत like a poverty stricken creature. Translation and purport by His Divine Grace is Bhaktivedanta Swami Shri Prabhupada. King Puranjan said, I do not understand why my household paraphernalia does not attract me as before. I think that if there is neither a mother nor devoted wife at home, the home is like a chariot without wheels. Where is the fool who will sit down on such an unworkable chariot? Purport by Srila Prabhupada. The great politician Chanakya Pandit has said, Mata yasya grihe nasti bharya cha priya vadini aranyatenam gantavyam yatha aranyam tatha griham. If a person has neither a mother nor a pleasing wife at home, he should leave home and go to the forest, because for him there is no difference between the forest and home. The real mata or mother is devotional service to the Lord, and the real patni, a devoted wife, is a wife who helps her husband execute religious principles in devotional service. These two things are required for a happy home. Actually, a woman is supposed to be the energy of the man. Historically, in the background of every great man, there's either a mother or a wife. One's household life is very successful if he has both good wife and mother. In such a case, everything about household affairs and all the paraphernalia in the house becomes very pleasing. Lord Chaitanya Mahaprabhu had both a good mother and pleasing wife, and he was very happy at home. Nonetheless, for the benefit of the whole human race, he took sannyas and left both his mother and wife. In other words, it is essential that one have a good mother and wife in order to become perfectly happy at home. Otherwise, home life has no meaning. Unless one is religiously guided by intelligence and renders devotional service unto the Supreme Personality of Godhead, his home can never become very pleasing to a saintly person. In other words, if a man has a good mother or a good wife, there is no need of taking sannyas. That is, unless it is absolutely necessary, as it was for Lord Chaitanya Mahaprabhu. Om Agyanti Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yutaha Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitamsta Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिण वंश कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हिंदी में इसका श्लोक का अनुवाद इस प्रकार है। महाराज पुरंजन बोल रहे हैं कि पता नहीं मुझे क्यों अपने गृहस्थ अपने जीवन में पहले जैसे आकर्षण महसूस नहीं हो रहा। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर घर में माता नहीं हो और अगर पत्नी नहीं हो जो वफादार हो तो घर ऐसा है कि एक रथ है लेकिन उसके पहिए नहीं हैं, तो कौन मूर्ख है ऐसे रथ के साथ बैठेगा। तात्पर्य प्रभुपाद जी बताते हैं कि चाणक्य पंडित का कहना है कि अगर घर में माता नहीं है और प्रसन्नता देने वाली पत्नी नहीं है तो जंगल में चले जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे केस में जंगल में और घर में कोई अंतर नहीं है। असली माता है भक्ति करना भगवान की, और असली पत्नी है वो पत्नी जो पति को धर्म के क्रियाओं में मदद करती है। घर में सुखी रहने के लिए दोनों आवश्यक है। वास्तव में स्त्री को एक पुरुष की शक्ति मानी जाती है। इतिहास में हम देखते हैं कि इसकी सफलता होती है या तो माता होती है या पत्नी होती है उसकी सफलता के पीछे। अगर अच्छी पत्नी हो और माता हो तो फिर जीवन गृहस्थ जीवन सफल हो सकता है। इस स्थिति में सब कुछ आनंददायक होता है। चैतन्य महाप्रभु के पास दोनों थे, अच्छी माता थी अच्छी पत्नी थी, लेकिन और घर में खुशी भी थे, लेकिन लोक कल्याण के लिए उन्होंने संन्यास लिया, अपनी माता और पत्नी दोनों को त्याग दिया। दूसरे शब्दों में आवश्यक है कि व्यक्ति को अच्छी माता और पत्नी हो सुखी होने के लिए, नहीं तो फिर गृहस्थ जीवन का कोई अर्थ ही नहीं होता। जब तक कि व्यक्ति को धार्मिक रूप से मार्गदर्शन नहीं मिलता और भगवान की सेवा नहीं करता तब तक उसका घर जो है एक साधु पुरुष के लिए आनंददायक नहीं होता। दूसरे शब्दों में अगर माता अच्छी है पत्नी अच्छी है तो संन्यास देने की जरूरत नहीं है, या सिर्फ एक ही स्थिति में चैतन्य महाप्रभु की तरह उनके लिए अत्यंत आवश्यक था संन्यास लेना। तो ये हम देखते हैं कि वैदिक जो प्रणाली है जो वर्णाश्रम की, ये बहुत ही वैज्ञानिक रूप से बनाई गई है कि जिससे धीरे धीरे हम अंतिम लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ सकें। अल्टीमेटली कोई भी वर्ण हो आश्रम हो उसका उद्देश्य है कि हम भगवान के चरणों में प्रेम जागृत करें। जब चैतन्य महाप्रभु उडुपी में गए तो भगवान उडुपी कृष्ण को देखकर बहुत देर तक नृत्य कर रहे थे, और जो तत्ववादी उस समय के जो अनुयायी थे मध्वाचार्य के, तो उनको समझ में नहीं आया, तो उनका आदर नहीं कर, उनको लगा कि कोई मायावादी सन्यासी। लेकिन फिर बाद में उनको पता चला कि वो चैतन्य महाप्रभु तो वैष्णव सन्यासी। फिर उन्होंने थोड़ा अच्छी बातचीत करना शुरू किया। महाप्रभु उनको चैलेंज किए कि आपके अनुसार जीवन का लक्ष्य क्या है और उसको कैसे प्राप्त करना चाहिए। तत्ववादियों ने बोला कि जीवन का लक्ष्य है वापस वैकुंठ जाना और तरीका है वर्ण और आश्रम का पालन करना, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने मना कर दिया। चैतन्य महाप्रभु ने सरासर गलत है, जीवन का लक्ष्य वैकुंठ जाना नहीं है, जीवन का लक्ष्य है भगवान के चरणों में प्रेम जागृत करना। भगवान वैकुंठ ले जाएं तो भी अच्छा है, भगवान संसार में रखें तो भी अच्छा। अगर भगवान की इच्छा है कि मैं नरक में रहूं तो नरक भी अच्छा है, और भगवान चाहें कि मैं वैकुंठ में रहूं तो भी अच्छा। और भगवान चैतन्य ने बताया कि उसका तरीका वर्णाश्रम पालन नहीं है, सिर्फ वर्णाश्रम तो एक साधन है, उसका तरीका है श्रवणम कीर्तनम, भगवान की कथा को सुनना, उनके नाम का कीर्तन करना, जप करना। और इसके लिए वर्णाश्रम एक साधन है, जैसे मुझे कहीं पर जाना है तो एक व्हीकल होता है, एक कार है या कोई बस है या ट्रेन है, उस साधन के माध्यम से मैं कहीं पर जा सकता हूँ। साधन अपने आप में लक्ष्य नहीं है, लेकिन वो साधन के माध्यम से हम कहाँ जाते हैं वो लक्ष्य। तो जैसे यहाँ पर गृहस्थ आश्रम को बताया गया है कि उसकी क्या चीज़ें अनुकूल होते हैं, वैसे ब्रह्मचर्य आश्रम को बताया जाता है सातवें स्कंद में कि क्या चीज़ें अनुकूल होती हैं, संन्यास आश्रम के लिए क्या चीज़ें अनुकूल होती हैं। तो अल्टीमेटली हर व्यक्ति को देखना है कि किस स्थिति में मैं ज़्यादा प्रगति कर सकता हूँ और कैसे जल्दी से जल्दी भगवान के चरणों में प्रेम जागृत कर सकते हैं। व्हाट इज दैट वर्स? धर्म सुनिश्चिता पुंसान विश्वक्सेन कथा सूय नोत्पादयेत् यदि रतिम श्रमैवी केवलम। तो अगर हम अपने वर्णाश्रम के ड्यूटीज बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, परफेक्ट ब्रह्मचारी है, निर्जला उपवास रख रहे हैं, लेकिन अगर भगवान से प्रेम नहीं हो रहा तो वो भी श्रम है। और गृहस्थ आश्रम में ऑनेस्टली अपने कर्तव्य कर रहे हैं और भगवान से प्रेम नहीं हो रहा तो वो भी श्रम है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर विशेष करके गृहस्थ आश्रम के बारे में इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि ये दोनों चीज़ें आवश्यक हैं, एक माता और एक पत्नी जो आज्ञाकारी है। तो वैदिक कल्चर में आवश्यक है। आजकल क्या हो गया कि भारत में भी, विदेश में तो बहुत पहले से ही, भारत में भी वर्णाश्रम का पालन ठीक से नहीं हो रहा। और स्पेशली जब एजुकेशन होने से, तो जो मॉडर्न शिक्षण में जो है वो एक आर्टिफिशियल वननेस क्रिएट करने का प्रयास किया गया। एकता आध्यात्मिक रूप से तो आत्मा एक ही है पुरुष और स्त्री में, लेकिन शरीर के रूप से अंतर है और उस अंतर को समझ के व्यवहार करना चाहिए। जैसे जैसे प्रभुपाद से एक वुमेन रिपोर्टर बोले, आर्ग्यू करने लगे, प्रभुपाद स्वामी जी इज इट ट्रू दैट इन योर इंस्टीट्यूशन मैन मेक डिसीशंस एंड वुमेन फॉलो, कि पुरुष जो है निश्चय करते हैं और स्त्री उसका पालन करते हैं। तो प्रभुपाद बोले वी ऑल फॉलो कृष्णा, हम सब कृष्णा का पालन करते। तो आर्ग्यू करने लगे कि स्त्री और पुरुष यू नो बराबर होना चाहिए। तो बराबर आध्यात्मिक रूप से ठीक है, लेकिन शरीर से अंतर है। प्रभुपाद मजाक करते हुए बोले, देखो एक स्त्री जो है गर्भवती हो सकती है, पुरुष नहीं हो सकता, ये ना, ये बराबरी का मतलब नकली बराबरी नहीं होना चाहिए। तो हर एक को भगवान ने रोल दिया है, उस रोल के अनुसार करना चाहिए। अभी एक हाथ है और पैर है, दोनों महत्वपूर्ण है। अगर हाथ सोचते हैं पैर का कार्य करूँ तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, नहीं अब पैर से आपको उठाने लगोगे तो निताई गौर प्रेमानंदे है ना। तो हर एक अपना से अपना अपने अपने आप को अपनी आध्यात्मिक पहचान और भौतिक पहचान दोनों समझना चाहिए। आध्यात्मिक रूप से जीवेर स्वरूप है कृष्ण र नित्य दास, सब कृष्ण के दास हैं, लेकिन भौतिक रूप से भेद को समझना भी आवश्यक है। तो जैसे अमेरिका में या दूसरे विदेश कंट्रीज में क्या होता है कि वो समानता पर ज़्यादा जोर देते हैं। हम मानते हैं आध्यात्मिक रूप से समान है और आध्यात्मिक रूप से सबको भगवत धाम जाने का अवसर समान रूप से है, लेकिन शरीर में भेद के कारण व्यवहार में भेद भी जरूरी है। जैसे कि प्रभुपाद जी बताते हैं आजकल विमेंस लिबरेशन अमेरिका में विदेशों में होता है कि उनको स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन वैदिक कल्चर में ऐसा नहीं है। वैदिक कल्चर में स्त्री के लिए स्वाभाविक है कि जन्म से लेकर विवाह तक एक पिता के मार्गदर्शन में रहना, विवाह के बाद पति के मार्गदर्शन में रहना, और बाद में अगर पति संन्यास ले लेते हैं या मृत्यु हो जाती है तो पुत्र के साथ रहना। तो ये अगर हम इसको हम नहीं पालन करते, आर्टिफिशियल स्वतंत्रता देते हैं, जैसे आजकल कॉलेज लाइफ में हो जाता है, तो होता है कि पुरुष स्त्री दोनों स्वतंत्र मानते हैं, दोनों संग करते हैं बिना विवाह के, और पुरुष तो फिर भाग जाता है और स्त्री को गवर्नमेंट के फंड्स के ऊपर रहना पड़ता है। ऐसा कई बार विदेश में होता है और अभी भारत में भी संस्कृति फैल रही है। तो वैदिक संस्कृति बहुत साइंटिफिक है, वो सब कुछ समझती है, व्यक्ति का मानसिक स्वभाव, शारीरिक लिमिटेशन, आध्यात्मिक स्वभाव, और सबका अल्टीमेट लक्ष्य है कि एक पूरे बॉडी के रूप में हम सब भगवत धाम की तरफ प्रगति करें। तो जैसे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि घर की मेंटेन करना एक स्त्री के लिए आवश्यक है। ये पुरुष घर में बाहर जा रहे हैं धन कमाने के लिए, घर का वातावरण इतना कृष्ण भावना भावित हो, मेंटेन किया अच्छी तरह से, कि जब वो लौट कर रहे हैं तो उनके सब जो एंग्जाइटीज हैं, चिंताएं हैं, दूर हो जाए आर्टिफिशियली। जब मैं ये नहीं कह रहा कि स्त्रियों को जरूरी है कोई नौकरी नहीं करनी है, लेकिन ये ज़्यादा फेवरेबल नहीं होता। ऐसा करने से क्या होता है कि जब दोनों पुरुष स्त्री धन कमाने में लग जाते हैं तो बच्चों की देखभाल ठीक से नहीं हो पाती, और फिर बहुत कृत्रिम अवस्था बन जाती है। स्पेशली कभी कई बार जब पत्नी होती ज़्यादा क्वालिफाइड होती है तो एक अहंकार सा आ जाता है। और ये भी महत्वपूर्ण है कि जो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, गुड वाइफ गुड मदर, माता और पत्नी, और उसमें इम्पोर्टेंट उन दोनों का आपस का रिश्ता भी, वो रियल चैलेंज आ जाता है। क्योंकि मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ बहुत सारी लीलाएँ होती हैं, सास बहू अत्या कोल्हे अलग अलग नाम है, लीलाएँ सेम होती है ना। तो जब अगर कृष्ण केंद्र में नहीं है तो ये रिलेशन मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये ट्राइंगल, मतलब पति उनके पत्नी और पति की माता, ये तीनों में ऐसा संबंध होना जिससे मिलकर प्रगति कर सके, उसकी आवश्यकता है। तो उसमें जो पत्नी होती है उसको समझना है कि प्रभुपाद जी बताते हैं जैसे हम कोई विवाह करता है तो वो सिर्फ पति से विवाह नहीं कर रहे, बल्कि विवाह जो है पूरे उस पति के पूरे समाज से कर रहे हैं। यानी जो पति के माता हैं, पिता हैं, उनके भाई हैं, सबके साथ संबंध हो जाते। तो और जनरली माता जो माता पिता हैं अब वृद्ध हो रहे हैं तो उनको कुछ आवश्यकताएँ होते हैं, वो सेवाएँ जरूरी हो जाती। और फिर जब वो ठीक से नहीं होता तो हम देखते हैं कि फिर तलाक हो जाता है। और दुर्भाग्यवश की बात है कि भारत में भी, एक्चुअली पहले भारत में ये नियम था नहीं तलाक का, लेकिन एक कोई पॉलिटिशियन के प्रसन्नता के लिए नियम इंट्रोड्यूस किया गया और अब तो बहुत वाइड स्प्रेड हो गया। और कई बार दुर्भाग्यवश कृष्ण भावना भावित परिवार में भी ऐसे अवांछित चीज़ें हो जाती हैं क्योंकि वो कृष्ण भावना को समझ नहीं पाते। तो सब ड्यूटीज़ को, सब कर्तव्य को उस तरीके से करना है कि जिससे मन में एक शांति की भावना बनी रहे जो कृष्ण भावना के लिए अनुकूल है। ऐसे ही ब्रह्मचर्य आश्रम में भी कोई भक्त हैं, किसी का रोल होता है कि भगवान के विग्रह की सेवा करना, किसी का रोल है कि बाहर जाके प्रचार करना, और सबके बीच में अगर आपस का संबंध अच्छा नहीं है तो उस तरह की समस्याएं फिर से शुरू हो जाती हैं। कि हर व्यक्ति को ये जानना है कि ये महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है कि आपका रोल क्या है, महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप कितना उस रोल को सहयोग करते हैं, उसमें कोऑपरेट करते हैं, से भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। जब हारमोनियम में कोई संगीत गाया जाता है तो हारमोनियम के अलग अलग रीड्स होते हैं। जैसे आप अगर हारमोनियम बजा रहे हैं तो आप एक दबाते हैं तो एक जो पीछे का रीड है ऊपर उठता है, एक नीचे जाता है, कुछ है जो बटन है जो बिल्कुल बहुत कम ही काम करते हैं लेकिन उनका भी रहना ज़रूरी है। और वो पूरा सब मिल के करते हैं तो एक ऑर्केस्ट्रा, एक अच्छा संगीत हो जाता है। या फिर ऑर्केस्ट्रा में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और एक व्यक्ति डायरेक्ट कर रहा है तो अगर सब मिलकर कर रहे हैं तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन हर एक व्यक्ति सोचता है कि नहीं मेरा ही आवाज़ अच्छा होना चाहिए, तुम बंद करो, तो फिर वो म्यूजिकल जो है वो ज़्यादा प्रसन्नता करने वाला नहीं होता। तो वैदिक कल्चर में इससे बताया गया। अभी ये बात पे एक बार एक भक्त ने, परम पूज्य राधानाथ महाराज कई बार प्रेरणा फेस्टिवल देते हैं, तो ये वाक्य जो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि वुमेन इज़ अ ग्रेट मैन के सक्सेस के लिए, या तो माता या पत्नी या कोई स्त्री होती है। तो एक व्यक्ति ने एक प्रश्न पूछा, कि वह प्रश्न पूछने वाले बहुत बिंदास होते हैं, तो बोले कि देना कि अगर आप बोल रहे हैं कि कोई एक स्त्री होनी चाहिए तो एक ब्रह्मचारी के लिए क्या है, क्योंकि उसने माता को छोड़ दी है, पत्नी का विचार ही नहीं है। तो राधानाथ महाराज से उन्होंने लेक्चर में पूछा तो हमारा जवाब दिया राधा रानी। राधा रानी तो सुप्रीम मदर, वो सबकी सफलता के लिए आवश्यक है ना। तो एक भक्त ने तो मतलब कुछ कुछ कई कई विद्यार्थी भी ऐसे प्रश्न पूछते हैं जो पूछना ठीक नहीं होता। जैसे एक ने प्रश्न पूछा कि लेक्चर था फिलॉसफी के ऊपर, और पूरी फिलॉसफी के बाद प्रश्न पूछा कि आपका सबसे फेवरेट स्वीट क्या है। तो महाराज दो क्षण के लिए चकौंदे रह गए क्या जवाब दें। तो महाराज बोले फेवरेट स्वीट है हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। महाराज बता रहे उसमें कोई शुगर डायबिटीज़ का कोई प्रॉब्लम नहीं है और कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। तो दूसरी बात जो प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में फोकस कर रहे हैं महाप्रभु की संन्यास लीला के बारे में, कि महाप्रभु के केस में तो दोनों चीज़ें अनुकूल थी। उनकी माता शची देवी वो तो भक्ति की माता हैं, सब भक्ति उन्हीं से आ रही हैं, वो फेवरेबल हैं। और उनकी पत्नी विष्णु प्रिया, ये दोनों आपस में बहुत अच्छा संबंध है। पहले महाप्रभु का विवाह लक्ष्मी प्रिया से हुआ था, लेकिन बाद में जब महाप्रभु गए पूर्व बंगाल में गए तो लक्ष्मी प्रिया उस विरह को सहन नहीं कर सके, उसके कारण उन्होंने अपना देह त्याग दिया। फिर अपनी माता की आज्ञा से फिर से विवाह किया विष्णु प्रिया के साथ। ये भगवान की शक्ति, जैसी श्रीदेवी और भूदेवी है, यही भगवान की दो शक्तियाँ जो लक्ष्मी देवी लक्ष्मी प्रिय और विष्णु प्रिय। तो विष्णु प्रिय का स्वभाव विशेष करके इतना सुंदर चैतन्य भागवत में बताया गया। सब कुछ भगवान के उनके घर में नारायण भगवान के विग्रह था, अधोक्षज नारायण, उसकी सेवा करना, तुलसी का ध्यान रखना, घर में प्रसाद बनाना, बिल्कुल ओबीडियंट सर्वेंट। और चैतन्य महाप्रभु भी एक परफेक्ट गृहस्थ थे। महाप्रभु हर एक आश्रम को बहुत पूर्णता से पालन करते। जब वो गृहस्थ थे तो इतने परफेक्ट गृहस्थ थे, जब संन्यास ले लिए तो इतने गंभीर थे कि कोई माता उनके पास भी नहीं आ सकते, दूर से ही प्रणाम करते। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि एक मजाक उन्होंने अपने आश्रम में किया था, जस्ट एक ही बार। एक वो है कि जब एक बार उनकी माता शची माता बोली कि ये कोई चीज़ है जो मिल नहीं रही, कहाँ पर रखी है, तो निमाई हंस के बोले शायद आपके बहू ने चुरा लिया है। मतलब इतना गंभीर रिलेशन था पति पत्नी में भी। तो फिर प्रश्न उठता है कि फिर महाप्रभु ने संन्यास क्यों लिया। इसके पहले मैं कहानी बताना भूल गया कि चैतन्य महाप्रभु के घर में एक आदर्श गृहस्थ का सबसे इम्पॉर्टेंट कर्तव्य है अतिथि की सेवा करना। एक बार प्रभुपाद जी से किसी भक्त ने पूछा कि सबसे इम्पॉर्टेंट कर्तव्य क्या है, मेरा अभी अभी विवाह हुआ है, मुझे क्या करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी बोले आप बहुत अच्छा जाके प्रसाद बनाओ, और प्रसाद बनाने के बाद भगवान को भोग लगाओ, और बाद में अनाउंसमेंट करो कोई भूखा है तो आ जाए, और फिर जब सब ले लें कोई नहीं बचे तो फिर आप ले सकते। हरे कृष्ण, पता नहीं वो डिवोटीज कितना पालन कर पाए। लेकिन एक्चुअली इनफैक्ट आदर्श गृहस्थ बनना आदर्श ब्रह्मचारी बनने से भी ज़्यादा चैलेंज है, आसान नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति करता है अच्छी तरीके से तो उसको भी वही फल मिलता है जो आदर्श ब्रह्मचारी को मिलता है, परफेक्ट कृष्ण प्रेम। तो अपने स्वभाव के अनुसार व्यक्ति को आश्रम चुनना चाहिए, और हर एक आश्रम को दूसरे आश्रम का आदर करना चाहिए। हर एक ब्रह्मचारी को सोचना चाहिए कि गृहस्थ आश्रम इतना डिफिकल्ट है, यू नो, पत्नी बच्चों का देखभाल करना, इन लॉज आउट लॉज, इतने नियम हैं, तो इसीलिए मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं योग्य नहीं हूँ उसके लिए, यू नो, आई एम नॉट क्वालिफाइड, इतने सारे एंगल से सबको बैलेंस करना। गृहस्थ को सोचना चाहिए कि ब्रह्मचारी, यू नो, बिना संग के रहना, स्त्री संग के, और सादा सरल जीवन बिताना इतना मुश्किल है, मैं उसके लिए योग्य नहीं हूँ। सन्यासी को समझ जाए कि मैं दोनों के लिए अयोग्य हूँ, इसलिए मैं बाहर घूम रहा हूँ। इस तरह से अभिमान नहीं होता। जैसे पहले राधा गोपीनाथ टेम्पल जब शुरू हुआ 1988 में, मैं जस्ट अमेरिका से लौट कर आया था। मैं 3 साल अमेरिका में डिग्री करने के बाद 87 तक था, और वहाँ वीज़ा नहीं मिलने पर मैं लौट के आया। तो जब मैं लौट के आया तो उस समय आश्रम था लेकिन बहुत ही खराब रिलेशंस थे। सब ब्रह्मचारी वो गृहस्थ को सोचते थे कि ये गृहस्थ हैं सब, ये माया में गिरे हैं, ये विष्ठा में पड़े हुए कीड़े हैं, और इनका उद्धार करने के लिए हम आए हैं, ये ना ऐसा। और गृहस्थ सोचते थे ये सब पैरासाइट्स हैं, कुछ कर नहीं सके, जॉब नहीं मिला तो इसलिए भगवे कपड़े पहन लिए, हेड शेविंग कर लिया, ये ना, तो बहुत नेगेटिव फीलिंग्स थे। तो लेकिन परम पूज्य राधानाथ महाराज के आने के बाद उन्होंने बहुत ब्रॉड माइंडेडनेस बनाया कि कैसे आदर करना एक दूसरे का, एक दूसरे के कमियों को जानते हुए भी एक दूसरे की अच्छाइयों के ऊपर फोकस करते हुए साथ में रहना। एक्चुअली ये प्रिंसिपल न केवल ब्रह्मचारी गृहस्थ के लिए, ये पूरे सब जगह के लिए, इसको हमने भी अलग अलग गुरुओं के डिसाइपल्स, अलग अलग टेम्पल्स के टेम्पल्स से डिवोटीज, अलग अलग आर्थिक बैकग्राउंड से, तो सब ये कृष्ण को केंद्र में रखना, यही सबसे बड़ा चैलेंज है। तो उसके बाद फिर महाराज जी के आने के बाद फिर ये एकता का मूड पैदा हुआ, ये बहुत आवश्यक है, यू नो। अभी एक्चुअली कोई भी कार में, यू नो, फ्रंट टायर्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन पीछे के टायर अगर पंक्चर हो जाए तो कार शायद चल नहीं पड़ेगी ना। दिखने में लगता है फ्रंट टायर ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन पीछे वाले भी उतने महत्वपूर्ण है। तो शरीर के अंगों की तरह सब ये वर्णाश्रम का विभाजन किया गया। फिर महाप्रभु के केस में ऐसा हुआ कि एक दिन अचानक 20 सन्यासी आ गए, और ये वास्तव में अतिथि थी। अतिथि मतलब बिना सूचना के आना। जब सूचना देता हूँ कि मैं आ रहा हूँ दोपहर को 12 बजे प्रसाद तैयार रखना, तो वो तिथि हो गया, अतिथि नहीं, अतिथि मतलब अचानक आ गए। तो शची माता तो एकदम घबरा गए, बेहोश हो गए, क्या होगा, घर में चावल का दाना भी नहीं। जगन्नाथ मिश्र शची माता, हालांकि वो यशोदा माता है, नंद बाबा हैं, लेकिन बहुत गरीब थे, इतने गरीब थे कई बार उनके घर अगले दिन के लिए अनाज भी नहीं होता था। तो शची माता एकदम शॉक्ड हो गए, लेकिन महाप्रभु बोले आइए बैठिए, उनके लिए सबके लिए आसन दिया और कुछ मीठे शब्द बोले और कुछ पीने के लिए जल दिया। और शिला प्रभुपाद जी बता सॉरी वृंदावन दास ठाकुर, हाँ प्रभुपाद जी भी बोलते हैं, यस दोनों वृंदावन दास ठाकुर की बुक में भी है और प्रभुपाद जी भी बोलते हैं कि ये तीन चीज़ें हैं जो कम से कम हर व्यक्ति दे सकता है। कोई व्यक्ति है उसके लिए मीठे शब्द स्वागत करते हुए, बैठने के लिए आसन और कुछ जल, यू नो ये फ्री ऑफ चार्ज, अभी तक तो फ्री है, बाद में पता नहीं जल का क्या होगा, दैट इज समथिंग वी कैन ऑफर। और प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अगर कोई शत्रु भी आए तो उसका इतना अच्छा स्वागत करना चाहिए कि वो भूल जाए कि मैं शत्रु हूँ। तो महाभारत में भी हम देखते हैं कि इवन जब लड़ाई के समय दिन में लड़ाई होती थी और शाम को एक दूसरे से मिलते थे, इतना प्रेम से बातचीत करते थे, इवन दुर्योधन भी जो कि बदमाश शिरोमणि है ना, वो भी जब वो कहानी आती है महाभारत में कि जब भीष्मदेव, जब दुर्योधन भीष्मदेव को बहुत कड़वे शब्द बोलते हैं कि आप कौन हो, आप हमारी तरफ से हो या उनकी तरफ से, आप कौरवों की तरफ से होकर मन में पक्षपात कर रहे हो, आप पूरी शक्ति से लड़ते तो पांडवों का सफाया हो जाता था। तो भीष्म गुस्से आके बोलते हैं कि तुम धूर्त हो, तुम मूर्ख हो, आप जानते नहीं हो कृष्ण की शक्ति, लेकिन फिर भी कल मैं पांचों पांडवों को मार दूंगा, अरे पांच बाण है। तो दुर्योधन बोलता है ठीक है मैं अपने लॉकर में रखता हूँ, तो सिक्योरिटी में रखते हैं ना। और एक व्यक्ति इसको सब कुछ मालूम होता है, महाभारत के प्रोड्यूसर डायरेक्टर भगवान कृष्ण। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं कि अर्जुन को कि तुम जाओ और जब दुर्योधन आपका स्वागत करेगा पूछेगा क्या चाहिए तो पांच बाण मांगना। तो अर्जुन शाम के समय जाते हैं लड़ाई होने के बाद, सूर्यास्त के बाद, और दुर्योधन का स्वागत करता है, कहता है आपको क्या चाहिए, आपको अगर चाहिए तो मैं राज्य दे दूँ बिना लड़ाई के। अर्जुन बोले अब तो लड़ाई शुरू हो गई, इट्स टू लेट फॉर दैट, मुझे पांच बाण चाहिए। तो दुर्योधन पांच बाण दे देता है, एटिकेट है, इसने वचन दिया तो पूरा करना। अब ये सुनकर फिर भीष्मदेव और प्रतिज्ञा कर देंगे कल मैं भयानक लड़ाई करूँगा और अर्जुन का जीवन अंत हो जाएगा। और आप जानते हैं अगले दिन इतनी इतनी भयानक लड़ाई होती है कि अर्जुन का रथ टूट गया, पूरा लहू लहान हो गया था। महाभारत के तीर ऐसे नहीं थे जैसे आजकल छोटे छोटे तीर हम कभी ड्रामा में यूज़ करते हैं, वो नहीं टूटे थे, महाभारत के तीर स्टील शाफ्ट की तरह थे, आर पार चले जाते, पूरा लहू लहान हो जाते और अर्जुन बिल्कुल हेल्पलेस थे, बस एक तीर की देरी थी और उनकी मृत्यु निश्चित थी। भगवान ने वचन दिया था कि मैं प्रतिज्ञा की थी कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मेरे भक्त का जीवन खतरे में है तो अपने सारी प्रतिज्ञा को भूल गए। और जैसे एक शेर हाथी की तरफ दौड़ता है, रथ के पहियों को हाथ में लेकर ऐसे दौड़े, उनके उत्तरीय गिर गई और उनकी आंखें क्रोध से लाल थे, पूरा शरीर में धूल लगी थी। आपने वो फेमस पेंटिंग देखा होगा, ये प्रभुपाद जी के भगवद्गीता में है। और उस समय फिर भीष्मदेव बहुत खुश हो गए, यस भगवान आपका स्वागत, भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी अर्जुन की रक्षा के लिए और भीष्म की प्रतिज्ञा को बनाए रखने के लिए। तो ये जो आती थी, इवन कर्ण हालांकि वो उसका कैरेक्टर तो अच्छा नहीं माना जा सकता, लेकिन उसके अंदर भी ये भाव था कि दान देना, चैरिटी। तो ये गृहस्थ आश्रम का इम्पोर्टेंट कर्तव्य है कुछ दान देना, मंदिर में या कोई भी कोई अतिथि आए। दान देने से क्या होता है कि ये भावना है कि ये मेरा है, ये चली जाती है, सभी को भावना है कि मेरा घर है, यू नो सब कुछ कृष्ण का है लेकिन 1000 square feet मेरा है, यू नो। लेकिन अगर हम घर में भक्तों को बुलाते हैं, कीर्तन करते हैं और मंदिर में दान देते हैं, सन्यासियों को दान देते हैं, तो अपने आप को भावना आ जाती है कि मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ कृष्ण का है। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनका स्वागत किया और जब अंदर गए शची माता ने देखा सब पदार्थ रेडी थे, चावल और शाक और पायसम खीर सब कुछ, महाप्रभु अपने हाथों से परोस रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि आदर्श गृहस्थ का कर्तव्य क्या है। और वो सन्यासी कौन थे, वो 20 सन्यासी थे, किसी को मालूम है सन्यासी कौन थे? वो ब्रह्मा, शिव, नारद, शुकदेव गोस्वामी, सब वेश बदल के आए थे सिर्फ प्रसाद खाने के लिए। तो अगर आप ऐसा करते हो तो ऑथराइज्ड है प्रसाद, शची माता के हाथों का प्रसाद लेने के लिए, दे आर सो ईगर, है ना। तो महाभारत भागवत में रंती देव की कहानी आती है, रंती देव आदर्श गृहस्थ थे, कि हम देखते हैं कैसे वो 48 दिन व्रत रखा था उन्होंने। हमारे में से कई लोग हैं जो साल में एक दिन व्रत रखते हैं 48 घंटे के लिए, नहीं 48 भी नहीं, कितने घंटे होते हैं 24 घंटे के लिए, और वो कितना एंग्जाइटी होता है। पिछली बार तो 10:05 था व्रत तोड़ने का समय, नहीं 6 घंटे बोनस फास्टिंग मिला है ना स्पेशल मर्सी। लेकिन मायापुर में नेक्स्ट डे फास्टिंग था और व्रत तोड़ने का समय था 4:52, इसलिए मैं मायापुर गया था इसमें। मैं हर साल पता लगाता हूँ वैष्णव कैलेंडर में सबसे फास्ट, कम से कम फास्टिंग कहाँ पर है। तो आप सोचिए उस दिन आप फास्टिंग कर रहे हैं, 10:10 है और एक ही गिलास नींबू पानी पड़ा है, और कोई भक्त बोलता है प्रभु जी मेरे को चाहिए, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलो ठीक है रुको मैं आधा पी के देता हूँ। रंती देव फास्टिंग कर रहे हैं 48 hours 48 days, और एक जस्ट प्रसाद लेने जा रहे हैं और एक भूखा ब्राह्मण आते हैं, महाराज जी मुझे भूख लगी है, पर अपना आधा भोजन दे दिया उनको बिना पूछे कि आप कहाँ पर कहाँ से हो। पहचान के जिन्हें लिए हम कपड़ा देना चाहते तो पहचान के व्यक्ति के लिए कि मैं चुतकेश्वर को जानता हूँ, मैं उनके लिए कुछ दूंगा क्योंकि जब मुझे ज़रूरत होगी तो वो मुझे देंगे, जिन्हें एक्सपेक्टेशन होती। लेकिन अनएक्सपेक्टेड जिसको आप जानते ही नहीं हो उसके लिए अपना त्याग देना, ये महानता का लक्षण है। तो अब वो बचा हुआ आधा भोजन खाने ही वाले थे और एक चांडाल आ गया, महाराज जी मुझे भूख लगी है। तरंती देव ने अपना बचा हुआ चांडाल को दे दिया। अब उनके पास क्या बचा? सिर्फ पानी है। लेकिन निर्जला व्रत के बाद पानी भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे अगर आप निर्जला व्रत के बाद कोई एक गिलास पानी का अगर समझो नहीं मिल रहा मार्केट में आप, कोई बोलते हैं 50 रुपये लगेंगे, तो बोले कोई बात नहीं 100 ले लो पानी दे दो, है ना थर्स्टी। तब पानी पीने जा रहे थे, महाराज जी मेरे कुत्ते बहुत प्यासे हैं। अभी मैं होता बोलता प्रभु जी आपके कुत्ते हैं, मैं कुत्तों का HOD नहीं हूँ कि है ना उनका देखभाल करना ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, ये ना वेटरनरी डिपार्टमेंट में जाओ, है ना। लेकिन उन्होंने पानी भी दे दिया और ऐसा नहीं कि उनको तकलीफ नहीं हुई, तकलीफ हो रही है शरीर में, कितना कितना जलन होती है जब गर्मी का मौसम, और यू नो भगवान का अरेंजमेंट है निर्जला हमेशा गर्मी के मौसम में आते हैं, नहीं भगवान का अरेंज से तपस्या बढ़े, अगर कार्तिक में आते तो बहुत आसान हो जाता निर्जला रखना, नहीं भगवान हमको थोड़ा ऑस्टियरिटी बढ़ाना चाहते। तो बचा हुआ जब जल भी उन्होंने दे दिया, उन्होंने एक बहुत सुंदर श्लोक बोला, मैं स्वर्ग नहीं चाहता, मैं वैकुंठ नहीं चाहता, मुक्ति भी नहीं चाहता, मैं जन्म जन्मांतर दूसरों के लिए कष्ट उठाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू सफर फॉर हेल्पिंग अदर्स। आप रूपा जी लिखते हैं कि ये एक वैष्णव का लक्षण है। भगवत धाम जाने के लिए क्वालिफिकेशन क्या है? कि दूसरों के लिए कष्ट स्वीकार करने की तैयारी रहना, जस्ट टू मेक अदर्स कृष्णा कॉन्शियस बाय चैंटिंग द होली नेम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रश्न उठता है कि चैतन्य महाप्रभु की माता हैं, वो तो परफेक्ट गृहस्थ हैं, उनकी माता पत्नी सब पूरा ठीक से कार्य कर रहे हैं, फिर ऐसा क्यों है कि चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया? ऐसे नहीं कि घर में झगड़ा हो गया, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, फिर जाके बस स्टैंड से वापस आ जाना, ऐसे नहीं है। महाप्रभु का जो सन्यास की लीला है ये बहुत गुह्य है, ये एक्चुअली करुणा की लीला है। महाप्रभु की जो सन्यास लीला है वो दिखाती है कि भगवान के अंदर कितनी करुणा भाव है हम सब जीवों को आकर्षित करने के लिए। जब प्रभुपाद को भी जब सन्यास लेने के लिए बोला गया, उनके गुरु महाराज स्वप्न में आ रहे थे भक्ति सिद्धांत ठाकुर, तो बहुत बोले प्रभुपाद को बोले थे सन्यास, प्रभुपाद सोचे थे मेरे बच्चों का विवाह नहीं हुआ है अभी, हॉरिबल ये भयानक है, मैं कैसे सन्यास ले सकता। फिर अपने गुरु भाइयों से पूछा प्रभुपाद जी ने, और वो बोले कि एक्चुअली प्रचार के लिए आवश्यक है, दूसरों को कृपा दिखाने के लिए। तो सन्यास महाप्रभु का भी सन्यास उसी भाव से है, बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए। एक श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में एक श्लोक है जो चैतन्य महाप्रभु का वर्णन करता है, मुझे संस्कृत नहीं पता, उसका अनुवाद है कि माया मृगम, जो जीव माया की खोज में गए हैं उनका पीछा करने के लिए भगवान सन्यास ले रहे हैं। मतलब इस अवतार में भगवान जो है जीवों के पीछे जा रहे हैं, बाकी सब जगह देखते हैं हम कृष्ण मुरली बजा रहे हैं, सब गोपियां कृष्ण के पास आ रहे हैं, भगवान राम की लीला में सारे वानर मदद कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भगवान पीछे पीछे जा रहे हैं, जो भक्तों के पीछे नहीं, जो नास्तिक हैं, जो मायावादी हैं, जो पापी हैं, उन सब के पीछे जा रहे हैं और उनके पास जाकर बोल रहे हैं कृष्ण का नाम लो, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वृंदावन दास ठाकुर इस लीला का वर्णन करते हैं, हमारे पास 15 मिनट बचे हैं, मैं शॉर्ट में बताऊंगा ये लीला जो कि बहुत प्रेरणादायक है। अब वृंदावन दास ठाकुर आशीर्वाद देते हैं कि जो भी व्यक्ति ये लीला को सुनते हैं कि महाप्रभु ने कैसे संन्यास लिया, उनके सारे कर्मों के बंधन कट जाते हैं, इसका मतलब वो भी सन्यासी बन जाते हैं। सन्यासी बनने का तो जरूरी नहीं कि दंडा धारण के सन्यासी, एक गृहस्थ व्यक्ति भी सन्यासी हो सकता है अगर वो अपना शरीर मन और वचन पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में अर्पण कर रहे हैं। गीता में भगवान कहते हैं ऐसे, स सन्यासी स योगी च न निर अग्निर न चाक्रिय अनाशित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति है, जो अपने सब कर्मों को भगवान की सेवा में अर्पण करता है। एक्चुअली सन्यास शब्द का अर्थ आप देखोगे सन्यास सत परम सत्य के लिए सब को त्यागना का सन्यास बोलते हैं। तो रियल सन्यासी का मतलब है अहंकार का त्यागना, वो बहुत मुश्किल है। जब महाप्रभु पुरी में थे, रघुनाथ दास गोस्वामी जस्ट अभी अपने घर से भागकर इस्कॉन में आ गए, मतलब फुल टाइम महाप्रभु की सेवा में आए थे, तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने पूछा स्वरूप दामोदर से, आप मुझे बताइए कि मैं सन्यासी तो हो गया, सन्यासी के कर्तव्य क्या हैं, आप बताइए। तो स्वरूप दामोदर ने भगवान से पूछा कि रघुनाथ ये पूछ रहे हैं, रघुनाथ इतने नम्र थे, वो सीधा भगवान से नहीं पूछते, स्वरूप दामोदर से पूछते, स्वरूप दामोदर भगवान से पूछते। तो महाप्रभु हंस के बोले स्वरूप दामोदर को कि आप ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं, लेकिन फिर भी आप पूछ रहे हैं मैं बताऊंगा। सन्यासी का कर्तव्य है भाल न खाइब और भाल न परिब, ज़्यादा स्वादिष्ट भोजन नहीं करना और ज़्यादा सुंदर कपड़े पहनना नहीं, बस सरल रहना। और उसमें फायदे भौतिक और आध्यात्मिक दोनों हैं, अगर आप सरल भोजन करते हैं तो अपने आप बीमारियां भी कम होती हैं। कोई भी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाओगे पहले चीज़ वो वही बोलेगा कि सब जो ज़्यादा तीखे ज़्यादा फ्राइड ज़्यादा जो टेस्टी चीज़ें उनको अवॉइड करने, दोनों तरीके से लाभ। और ज़्यादा ज़्यादा ऑपुलेंट भोजन में फ़ायदा ये है कि थोड़ा खर्चा भी ज़्यादा होता है और डॉक्टरों को सेवा मिल जाती है, दो साइड बेनिफिट्स हैं ना। तो भाला ना खाई वह भौतिक दृष्टि से भी अच्छा है, आध्यात्मिक दृष्टि से भी अच्छा है। तो हालांकि सन्यासी के लिए बोला गया, गृहस्थ भी इसका लाभ उठा सकते हैं, ऐसा नहीं कि अगर आप गृहस्थ होकर सी सिंपल खाओगे तो वर्णाश्रम में कोई भेद कोई अपराध हो जाएगा नहीं। तो भाला ना खाई वह और भाला ना पोरी वह, सिंपल वस्त्र पहनना, और सरल वस्त्र पहनने से अपने आप खर्चे भी कम हो जाते हैं और मेंटेन करना भी आसान हो जाता है। मतलब बेसिक वर्णाश्रम कैसे बनाया गया कि ज़्यादा एनर्जी फोकस हो सके श्रवण कीर्तन में और बाकी जितना हो सके जो आवश्यक है उतना कर लो। जैसे एक मिठाई है, मिठाई का डब्बा है, आपको बताया कि 1 किलो टोटल मिलने वाला है आपको, तो क्या अच्छा है कि 900 ग्राम मिठाई 100 ग्राम का डिब्बा या 100 ग्राम का मिठाई और 900 ग्राम डिब्बा, ये ना क्या ज़्यादा अच्छा है ना। तो नेचुरली आप चाहेंगे कि मिठाई ज़्यादा हो। तो सिंपल लाइफ मतलब मिनिमम डब्बा और ज़्यादा मिठाई, मिठाई मतलब हरे कृष्ण मंत्र भागवत कथा वैष्णव सेवा, और डब्बा मतलब फॉर्मेलिटीज़, यू नो रिलेशन जो मटीरियल फॉर्मेलिटीज़ जो थोड़ा थोड़ा ज़रूरी है। ब्रह्मचारी लाइफ मतलब बहुत सिंपल, डब्बा ही नहीं डायरेक्टली हाथ में ही प्रसाद लेना बहुत सिंपल रहना है ना। और सन्यासी लाइफ भी ऐसे, गृहस्थ लाइफ मतलब थोड़ा डब्बा रखना लेकिन मिनिमम आवश्यकता, जितना मेहनत जितना आवश्यक हो उतना ही करना शरीर के पालन के लिए, क्योंकि जो कर्मों में लिखा है वो मिलना ही है और जो नहीं लिखा है वो नहीं मिलना है, तो फिर मेहनत करना ही क्यों। हरे कृष्ण, ये भी प्रश्न उठते हैं, वो इसलिए करना क्योंकि हमारा स्वभाव है मेहनत करना, हमें कुछ ना कुछ कर्म करने की इच्छा है, बिना कर्म के भी हम नहीं रह सकते। तो आदर्श गृहस्थ जीवन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 घंटे मेहनत करना और ज़्यादा समय कृष्ण भक्ति में फोकस रखना, केंद्र को रखना। तो महाप्रभु ने जवाब दिया भालना खाइब भालना परिब और ग्राम्य कथा न सुनिब ग्राम्य वार्ता न कहिब। संसारी बातचीत प्रजल्प, कई बार स्पिरिचुअल प्रजल्प भी हो जाता है, वो भक्त ने ये बोला, इसने ऐसे किया, नहीं सब आवश्यक नहीं होता। और सुनी वो न बोली, बोलना भी नहीं सुनना भी नहीं। और लास्ट में क्या बोलते हैं, त्रिनादपि सुनी छे न तरोरी व श्रेष्ठ अमान न मान देन कीर्तनीय सद। बोलते हैं ये सन्यासी का सबसे इंपॉर्टेंट गुण ये बताया गया, भला न खाई वह भला न परी वह इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है त्रिनादपि सुनी छे। तो त्यागना मतलब धन त्यागना, संसार स्त्री संघ को त्यागना ये मुश्किल नहीं है, लेकिन अहंकार त्यागना, ये भावना त्यागना कि मैं सुपीरियर हूँ, दूसरों से श्रेष्ठ हूँ, इस भावना को त्याग कर त्रिनादपि सुनिचे न भाव में भगवान का नाम लेना, ये रियल सन्यास। व्रजे राधा कृष्ण मानस सेवा करी, माँ प्रभु बोलते हैं मन में राधा और कृष्ण का ध्यान करना। इस मन में अगर आप राधा कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं तो आप वृंदावन में, आप वृंदावन चंद्र के पास में, लेकिन मन में अगर राधा कृष्ण का ध्यान नहीं है तो आप वृंदावन में रहकर भी आप वृंदावन में नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रकार के सन्यास को इनकरेज किया। जब महाप्रभु एक बार ईश्वरपुरी से मिलने के बाद घर में लौट कर आए, अब वो बिल्कुल कृष्ण प्रेम के प्रेम लक्षण प्रकट कर रहे थे। एक दिन वो कुछ विद्यार्थियों के बीच में बैठे थे और वो अचानक वो बोल रहे थे, गोपी गोपी वृंदावन वृंदावन। और सारे विद्यार्थी जो भक्त नहीं थे वो तुरंत, नहीं भाई क्या बोल रहे हो, गोपी गोपी कृष्ण का नाम लो, कृष्ण का नाम लेने में तो लाभ होता है, गोपियों का नाम लेने में क्या लाभ होगा। तब चैतन्य महाप्रभु बहुत गुस्से हो गए, मारने है, बोले कौन कृष्णा, ओ कृष्णा, वो कृष्णा जिन्होंने वामन देव के रूप में बलि महाराज का सब कुछ धोखे से छीन लिया, वो कृष्ण की पूजा करने को आप बोल रहे हो। वो कृष्ण जो भगवान रामचंद्र जी के रूप में थे, और जब शूर्पणखा आई और उसने अच्छा प्रपोजल रखा, मैं सुंदर हूँ आप भी सुंदर है, 50% राइट था वो, लेकिन भगवान राम ने उनका नाक कटवा दिया, वो कृष्ण, ऐसे कृष्ण का मैं नाम क्यों लूँ। ऐसा कहकर महाप्रभु गुस्से में आए और वो विद्यार्थी भागने लगा, भागने लगा एकदम तेज पद से। भागते भागते वो अपने ग्रुप में पहुंचा, सारे विद्यार्थी ने पूछा क्या हुआ, पसीना आ रहा था, शरीर कांप रहा था, क्या हुआ। बोले क्या हुआ, आज बच गया यही सौभाग्य समझो, आज निमाई पंडित के पास में गया, मैंने सुना था कि निमाई पंडित ईश्वरपुरी से दीक्षा लेने के बाद कृष्ण के भक्त बन गए, मुझे लगा कि अब उनका स्वभाव अच्छा होगा, और मैंने उनको बोला कृष्ण का नाम लेने के लिए, कृष्ण के भक्ति करने के लिए, और उन्होंने ऐसे शब्द कृष्ण के बारे में बोले जो मैं यहाँ पर बोलना नहीं चाहता, वातावरण को प्रदूषित नहीं करना चाहता, कृष्ण की निंदा की उन्होंने और वो मुझे मारने के लिए आए, आज मैं बच गया। एक विद्यार्थी बोला ये कैसे वैष्णव है, ये ब्राह्मण को मारने के लिए आ रही है, कहाँ वैष्णव टिकट में लिखा गया। दूसरा बोले ये कृष्ण का नाम नहीं ले रहे, ये वैष्णव कैसे हो सकते हैं। तीसरा बोलने लगे क्या वो ब्राह्मण है तो क्या हम शूद्र के बच्चे नहीं हैं, हम भी ब्राह्मण हैं, वो अपने आप को क्या समझते हैं, कोई राजा नहीं है जो हमको सजा दे सकता है, कल तक तो जगन्नाथ मिश्र के पुत्र थे, हमारे साथ में थे, रवि अपने आप को क्या समझते हैं। इतना सब मन ही मन निंदा कर रहे थे, मन ही मन शब्दों में निंदा कर रहे थे। श्री चैतन्य महाप्रभु जो भगवान हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वात्मा हैं, सबके मन की बात को जानते हैं, वो जान गए इनकी भावनाओं को, सोचने लगे कि मेरा अवतार हुआ इन सब जीवों का उद्धार करने के लिए, लेकिन जब तक ये मेरा आदर ही नहीं करेंगे तो फिर मैं कैसे उनका उद्धार करूँगा। मुझे संन्यास लेना चाहिए, अगर मैं संन्यास लूँगा तो लोग मेरे को प्रणाम करेंगे और तब मेरे वाक्य को ध्यान से सुनेंगे। डॉक्टर क्यों एप्रन पहनते हैं, डॉक्टर अगर एप्रन नहीं भी पहने ड्रेस तो भी वो डॉक्टर का कार्य कर सकते, लेकिन जो पेशेंट उसको सीरियसली नहीं लेंगे। अभी पुलिस का भी एक ड्रेस होता है, है ना, पुलिस अगर ड्रेस नहीं पहने ट्रैफिक पुलिस को, ऐसे व्यक्ति ऐसे हाथ कर रहे हैं तो आप उसको एक दूसरा हाथ दिखा के निकल जाते हैं ना, तो ड्रेस महत्वपूर्ण होती है ना। तो इसीलिए महाप्रभु ने संन्यास लेने का निश्चय किया कि लोग मेरा आदर करेंगे और मेरे को प्रणाम करने से फिर उनके पाप नष्ट हो जाएंगे। इसे बताया कि सन्यासी को प्रणाम करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तो महाप्रभु फिर सबसे पहले नित्यानंद प्रभु के पास गए, बोले निताई मैं आपको एक संदेश बताना चाहता हूँ कि ये देखो जो मैं दवाई लेकर आया था पिपली का, ये म्यूकस को कफ को बढ़ाने लगा है, मैं आया था उनको बीमारी को दूर करने के लिए, उनकी बीमारी बढ़ रही है। दूसरे शब्दों में मैं आया था इनके बंधन को काटने के लिए, लेकिन इनके बंधन बढ़ रहे हैं क्योंकि वो मेरी निंदा कर रहे हैं, उनके पाप बढ़ रहे हैं। कल बहुत जल्दी मैं संन्यास ले लूंगा और जो मेरे को मारने आ रहे थे उनके घर में जाकर भिक्षा मांगूंगा, मेरे को अनुमति दो संन्यास लेने के लिए। अगर आप चाहते हो दुनिया का कल्याण हो तो मेरे को रोकना मत। महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को बोल रहे हैं, परमिशन मांग रहे हैं, लेकिन ऐसे मांग रहे हैं कि मतलब ऑर्डर कर रहे हैं, वो भगवान के लिए ठीक है। तब नित्यानंद प्रभु को ऐसा लगा कि जैसे किसी ने वज्र से प्रहार कर दिया, किसी ने अचानक प्राण वायु निकाल दी। नित्यानंद प्रभु के मुंह बंद हो गया, वो बोल ही नहीं पाए और फिर वो बोलने लगे, हे प्रभु आप तो धर्म के रक्षक हो, आप सब सिद्धांतों को जानते हो, आप जानते हो कि क्या चीज़ दूसरों के लिए अच्छा है, आप जो चाहे कर सकते हो, आप जो ठीक लगे वो करो। और मन ही मन नित्यानंद प्रभु सोच रहे थे कि अब कोई उनको रोक नहीं सकता। फिर श्री चैतन्य महाप्रभु मुकुंद दत्त के पास गए, बोले कुछ गीत गाओ हरे कृष्ण। मुकुंद दत्त गाने लगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कुछ गीत पूरा होने के बाद भगवान मुकुंद दत्त को अपने पास में बुलाए और कहने लगे, मुकुंद मैं बहुत जल्दी संन्यास लेने वाला हूँ, अपने बालों को काटूंगा और एक स्थान से दूसरे स्थान भ्रमण करूँगा। मुकुंद दत्त को ऐसा लगा कि इसकी आवाज़ थर थर कांपने लगे, प्रभु आप जो चाहे कर सकते, आपको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन मेरी इच्छा है कि आप यहीं पर रहो, थोड़े दिन और हमारे साथ रहो, कीर्तन में भाग लो। फिर भगवान गदाधर पंडित के पास गए जो राधा रानी के अवतार हैं, और बोले, गदाधर मैं घर में नहीं रहूँगा, मैं वहीं जाऊँगा जहाँ कृष्ण आदेश देंगे, मैं अपने बालों को कटवा के भ्रमण करूँगा। गदाधर को लगा कि कोई सिर के ऊपर प्रहार किया वज्र से, और होश आने के बाद वो बोले, प्रभु आपके शब्द मुझे बड़े अजीब लग रहे हैं, क्या बाल काटने से कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है, क्या गृहस्थ आश्रम में रहकर भक्ति नहीं की जा सकती। हे प्रभु आप सोचो, आपकी माता विधवा है, उनका कोई आश्रय नहीं है, आपके चले जाने पर आप उनकी मृत्यु का कारण बनोगे, क्या यह धर्म है अपनी माता के मृत्यु का कारण बनना। आप जाना चाहते हो प्रभु तो आप जा सकते हो, क्या भगवान उन भक्तों से प्रसन्न नहीं है जो घर में रहकर भक्ति कर रहे हैं, फिर भी आप जो चाहे कर सकते हो प्रभु। फिर श्री चैतन्य महाप्रभु इस तरह से धीरे धीरे सची माता को भी हिंट मिल गया, सारे भक्तों को पता लगना, वो निमाई के पास आके रोने लगी, न जाइए अरे बाप न जाइए, हे निमाई मेरे को छोड़कर मत जाओ, तुम्हारे कमल नयन घुंघराले बाल और सुंदर देह को देखकर मैं जीवित रह रही थी, अब तुम नहीं रहोगे तो क्या लाभ होगा, आपके साथ अद्वैत है, नित्यानंद है, गदाधर है, इन सब के साथ रहो और उत्साह से कीर्तन करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आप तो धर्म के मूर्तिमान स्वरूप हो, क्या यह धर्म का सिद्धांत है कि अपनी माता के मृत्यु का कारण बनना। तब मैं तुम्हारे बड़े बेटे छोड़कर गए विश्वरूप, वो दुख को मैंने बड़े मुश्किल से सहन किया, अब तुम भी चले जा रहे हो तो बहुत मुश्किल होगा। मैं इस तरह से बहुत जोर जोर से रोने लगे, निमाई अपनी माता को एक निर्जन स्थान में ले गए, बताने लगे, हे माता तुम जान लो कि तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, तुम पूरे जन्म में अदिति थे और मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में आया, तब मेरा नाम था वामनदेव, इसके पहले तुम कौशल्या थी, तब मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में आया और मेरा नाम था राम, तुम ही देवहूति थे और मैं तुम्हारा पुत्र था कपिल, तुम ही जब देवकी के रूप में थे मथुरा में कंस के जेल में, मैं कृष्ण के रूप में प्रकट हुआ और तुम धरती के अवतार हो, और दो रूप में मैं आपके साथ रहूँगा। धरती से दो चीज़ें बनती हैं, एक डीटीज बनते हैं, अधिकांश मूर्तियाँ जो मिट्टी से या मेटल से बनाए जाते हैं ये धरती का एक्सपेंशन है, और दूसरा है जीभ टंग, ये जीभ भी धरती का एक्सपेंशन है, अर्थ से बनती है। तो ये मूर्ति के रूप में मैं आपके साथ में हूँ, और जीवा में हरे कृष्ण महामंत्र है, उसमें भी तुम मेरी माता हो, तो हर रूप में मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे से अलग नहीं हूँ। फिर विष्णुप्रिया को पता चला, वो रो रहे थे, निमय उनके पास गए, बोले आपको किसने बताया मैं संन्यास ले रहा हूँ। विष्णुप्रिया बोलने लगी, मुझे पता है आपकी क्या इरादा है, मेरे कारण आप संन्यास ले रहे हो, ऐसा करते मैं खुशी के साथ जहर ले लूंगी, मेरे प्राण चले जाए, कम से कम नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवास सब भक्तों को तो लाभ मिलेगा, अगर मेरे कारण आप संन्यास ले रहे हो तो मैं अभी प्राणों का अंत करें। फिर नीमा ने उसको समझाया कि एक्चुअली तुम मेरी शाश्वत शक्ति हो, इस दुनिया में हम सब घास के तिनके के समान है, नदी के प्रवाह में तिनके एकत्रित होते हैं फिर अलग अलग हो जाते हैं, ऐसे ही हमारी अवस्था है। फिर उनको समझाया और फिर एक दिन सारे वैष्णव आए, महाप्रभु ने सबको माला पहनाई, चंदन लगाया और फिर भगवान ने बताया उसको, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, अगर आप मेरे से प्रेम करते हो तो हर समय हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हमेशा हरि का नाम। ये इंटरेस्टिंग है, जैसे हम किसी को प्रेम करते हैं तो हम वो चीज़ करेंगे जो उसको अच्छा लगता है, जैसे महावीर प्रभु को प्रेम करता हूँ, उनको समझो अच्छा लगता है स्वीट राइस एग्जाम्पल, तो उनके लिए खीर ले आऊँगा, उनको समझो गुलाब जामुन पसंद है तो उसको गुलाब जामुन ले आऊँगा, या किसी को सिंपल खिचड़ी पसंद है तो खिचड़ी ले आएंगे। तो भगवान बोल रहे हैं मुझे सबसे अच्छा पसंद है हरि नाम, और न केवल अपनी माता को बोल रहे हैं, हम सबको बोल रहे हैं, अगर आप महाप्रभु को खुश करना चाहते हो तो जीवा से हमेशा हरि नाम लो, सबसे बड़ी सेवा है कीर्तनीय सदा हरि। तो महाप्रभु सबको बोलने लगे कि आप बस हरि नाम लो। अरे बहुत सुंदर बात बोलते हैं, खाइते शुईते बोशिते, खाते हुए सोते हुए उठते हुए हमेशा मुँह से बोलिए कृष्ण कृष्ण राम राम हरि 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 हरि, अगर आप ऐसा करोगे तो आपका जीवन सफल होगा। अब सब भक्त चले गए, अभी लास्ट दिन है, जिस दिन महाप्रभु संन्यास लेने वाले, पता नहीं कैसे सब लोग उसी दिन आए, ऐसा नहीं था कि उनके पास व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आया था, उनके पास पी ऐप था, परमात्मा ऐप है ना, जो हमेशा एक्टिव रहता है, वो सिम कार्ड के बिना भी चलता है ना। तो महाप्रभु सबके मन में है, सब चले गए। बाद में लास्ट में श्रीधर खोला बेचा आए, जो एक पंपकिन ले आए, और महाप्रभु सोच रहे थे अभी कल तो मैं जा रहा हूँ आज रात को, फिर क्या खाऊंगा इसको। और फिर कोई एक भक्त दूध लेकर आए, शची माता ने एक स्वीट बनाया, ये लास्ट स्वीट था, दूध और पंपकिन जो कद्दू के साथ बड़े प्रेम के साथ भगवान ने स्वीकार किया, और रात को सो गए। लेकिन शची माता भी सोई नहीं, उसको भी हिंट था, और हरिदास ठाकुर गदाधर तो दरवाजे के पास ही वहाँ पर लेटे हुए थे, और जैसे महाप्रभु जब रात के 2 घंटे बचे थे अचानक उठे, और गदाधर हरिदास बोले हम भी साथ में जाएंगे, महाप्रभु नहीं मैं अकेले जाऊंगा, संन्यास मतलब अकेले जाना, शची माता के पास। शची माता एकदम पेंटिंग की तरह अवाक थे, स्तब्ध स्टंड। तो महाप्रभु उनको देख के बोले माता जन्म जन्म तो मेरी माता हो, तुमने मुझे कृष्ण भक्ति दी है, लाखों कल्पों में भी जो तुमने मेरी सेवा की है वो ऋण मैं कभी नहीं चुका सकता। हे माता भगवान है जो सबको मिलाते हैं सबको अलग करते हैं, इस दुनिया में कोई जीव स्वतंत्र नहीं है, आप मुझे आज्ञा दो मैं जा रहा हूँ, 10 दिन के भीतर मैं फिर लौट कर आऊँगा। ऐसा कहकर उनके चरण स्पर्श करके परमिशन ले लिया, परमिशन ले लिया मतलब ले लिया है, और निकल पड़े। अब सब जगह पे समाचार फैल गया, सारे भक्त बहुत पीड़ित हो गए, अद्वैत श्रीवास सब जगह ढूंढने लगे। अब नीमाई दौड़ते हुए गए योगपीठ के पास, एक रास्ता जाता है गंगा नदी की ओर, एक घाट है जिसका भी नाम हो गया निर्दयी घाट, इसका नाम भक्तों ने बदल दिया कि शची माता नीमाई नीमाई पुकारे थे, घाट ने कोई जवाब नहीं दिया, इसका नाम निर्दयी हो गया निर्दयी घाट। और वहाँ पर उन्हें छलांग लगा के गंगा पार करके चिकल गए। जब सोचिए जनवरी के महीने में 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन गंगा में स्नान करके तैरते हुए नदी पार करना आसान नहीं है, जैसे हम लोग जब यात्रा में जाते हैं अप्रैल मई में तो लोग स्नान करते हैं, बोलना पड़ता है जल्दी बाहर आओ लेट हो रहा है लेट हो रहा है, लेकिन जनवरी में बोलना नहीं पड़ता, सब श्री विष्णु श्री विष्णु श्री सब जल्दी बाहर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर महाप्रभु तैरते हुए गए, फिर नदी पार करके दौड़ते हुए 40 किलोमीटर कटवा में पहुँचे, जहाँ पर केशव भारती का आश्रम था, तो कंटक नगर भी बोलते हैं कटवा का नाम। और महाप्रभु उनके पास में गए और बहुत सारे लोग देख रहे थे, और सब महाप्रभु को देखकर सबके आंखों से आंसू आ रहे थे, और सब जोर से बोल रहे थे हरी 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 हरी। महाप्रभु के जब प्रेम के लक्षण को देखा तो केशव भारती सोचने लगे ऐसे प्रेम के लक्षण सिवाय भगवान के और कोई प्रदर्शित नहीं कर सकता, मुझे लगता है कि यही भगवान है। फिर भी आप मुझे गुरु के रूप में स्वीकार कर रहे हो, मैं आपकी सेवा करूंगा गुरु के रूप में। चैतन्य महाप्रभु उनके पास में गए और बोले, मेरे साथ चालाकी मत करो, मुझे संन्यास दो, जल्दी से संन्यास दो, मैं आपका सेवक बनना चाहता हूँ। फिर चंद्रशेखर सब सेरेमनी अरेंज करने लगे संन्यास के लिए, यज्ञ के अरेंजमेंट। और एक बार्बर जो शेविंग करने वाला था, उसका नाम था मधु, मधु, यस आपने बताया मधु, आप भी थे उधर रहता, यस है ना, मे बी वी डोंट नो हु इज हु। तो मधु वो शेविंग करने लगा, हाथ थर थर कांप रहा था, सारे भक्त रो रहे थे, सब बोल रहे थे मत शेव करो, उसका हाथ कांप रहा था। भगवान बोले, अच्छा शेविंग करो, फिर से जन्म मैं वैकुंठ ले जाऊंगा आपका। तो उसने तुरंत शेविंग किया, उसने ब्लेड भी रेजर सब फेंक दिया और मिठाई की दुकान, स्वीट शॉप, मधुर 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 स्वीट्स भेजने लगे। अब महाप्रभु का नामकरण संस्कार, महाप्रभु उनके पास में गए गुरु के और कान में बोले, कल रात को उन्होंने एक सन्यासी मेरे स्वप्न में आए और उन्होंने मुझे सन्यास मंत्र बताया, ये मंत्र करेक्ट है? केशव भारती बोले, यही मंत्र, आओ मैं मंत्र तुमको दूंगा। अभी महाप्रभु ने वो मंत्र केशव भारती को सुनाया और केशव भारती ने उनको सुनाया, मतलब महाप्रभु उनके गुरु हो गए, क्योंकि गुरु सुनाते हैं, तो कृष्णम वंदे जगत गुरु। और तब वो सोचने लगे, मैं इसका क्या नाम रखूं? जनरली गुरु का नाम भारती होता है, शिष्य का नाम भी लास्ट में भारती होता है। सोचने लगे, मैं भारती रखूंगा तो लोग सोचेंगे केशव भारती के शिष्य हैं, मैं नहीं चाहता। आप पूरी दुनिया को कृष्ण भावना प्रदान करोगे, सब में कृष्णा चेतना जागृत करोगे, इसलिए आपका नाम होना चाहिए श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य। और श्री कृष्ण चैतन्य बोलकर उनको नाम दिया गया। विष्णु सहस्त्र नाम में 1000 नाम है विष्णु के, उसमें 8 नाम जो है चैतन्य महाप्रभु के हैं। वो कौन कौन से नाम है? सुवर्ण वर्ण हेमांग वरंग चंदनागदौ संन्यासक चम शांत निष्ठा शांत परायण, ये 8 नाम है, उसमें एक नाम है संन्यास। सिर्फ यही अवतार में भगवान संन्यास लेते हैं, भगवान राम भगवान कृष्ण संन्यास नहीं लेते, यही अवतार में भगवान रथ के सामने झाड़ू लगाते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि स्टार टीवी पे दिखाई पड़ेगा, भगवान दिखा रहे हैं कि एक हम्बल सर्वेंट का रोल क्या है। और उसके बाद फिर केशव भारती संन्यास लेने के बाद दोनों एक्सटेसी में डांस करने लगते हैं, महाप्रभु और केशव भारती हाथ ऊपर करके गाने लगते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, इतने एक्सटेसी में होते हैं कि उनका दंडा और कमंडल गिर जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता। और एक डिवोटी होते हैं जो महाप्रभु से मिलने जा रहे होते हैं, महाप्रभु से मिलने नवदीप जा रहे थे, उनका नाम था गंगादास भट्टाचार्य, और किसी ने बोला, आप कहाँ जा रहे हो नवदीप, किस लिए जा रहे हो? महाप्रभु से मिलने। अरे निमाई पंडित तो यहीं पर है, उनका संन्यास हो रहा है। तो वो जब पहुंचते हैं तो अनाउंसमेंट हो रहा है कि आज से आपका नाम होगा श्री कृष्ण चैत, तो इतने एक्सेसिव में आ जाते हैं, उनके मुंह से एक ही शब्द निकलता है, चैतन्य 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 चैत। कोई पूछते हैं उनसे, कहाँ जा रहे हो? चैतन्य। क्या टाइम हुआ है? चैतन्य। प्रसाद कितने बजे? चैतन्य। आपका एग्जाम किस पे होना है? चैतन्य चैतन्य। सारे भक्त उनका नाम बदल देते हैं और उनका नाम हो जाता है चैतन्य दास, और वही बाद में श्रीनिवास आचार्य के पिताजी बनते हैं। फिर महाप्रभु एक्सटेसी बोलते हैं, वृंदावन जा रहा हूँ, और वृंदावन की तरफ निकल पड़ते हैं। नित्यानंद प्रभु सोचते हैं कि भगवान के लिए वृंदावन जाना ठीक नहीं है, भक्तों को बहुत कष्ट होगा। तो छोटे बच्चों को बोलते हैं, जब निमाई पूछेंगे कि वृंदावन का रास्ता कहाँ है, वृंदावन स्ट्रेट है, आप उनको शांतिपुर का रास्ता बताना। तो सुप्रीम डायरेक्टर मिसडायरेक्ट कर रहे हैं, सुप्रीम गुरु हैं वो गलत रास्ता दिखा रहे हैं नित्यानंद प्रभु। तो महाप्रभु एक्सटेसी में जा रहे थे, छोटे बच्चों को देखकर बोलते हैं हरी हरी, पूछते हैं वेयर इज द वे टू वृंदावन, तो बच्चे बोलते हैं कि इस तरफ है। तो महाप्रभु भी टर्न करते हैं, नित्यानंद प्रभु भी टर्न करते हैं। तो महाप्रभु को शंका आती है, डाउट आता है, नित्यानंद तुम्हें कोथा जा बे, वेर आर यू गोइंग? नित्यानंद प्रभु बोले, आमी तोमा संगे जाइबे वृंदावन, मैं भी आपके साथ जा रहा हूँ वृंदावन। महाप्रभु बोलते हैं, कत दूर आछे वृंदावन, कितना दूर है? तो नित्यानंद प्रभु देख के बोलते हैं, यही देख यमुना दर्शन, सामने गंगा होती है, ये यमुना है। तब तो महाप्रभु इतने खुश होते हैं, यमुना के स्तोत्र गाने लगते हैं और स्नान करने जाते हैं, और उतने में देखते हैं, अरे एक बोट के ऊपर अद्वैत आचार्य नए वस्त्र कौपिन लेकर, डाउट आते हैं, ये वृंदावन, यमुना, शांतिपुर, गंगा, व्हाट इज गोइंग ऑन? मैंने पूछते हैं, अद्वैत आपको कैसे मालूम पड़ा कि मैं वृंदावन में हूं, आप यहां क्या कर रहे हैं वृंदावन में? अद्वैत आचार्य बोले, शांतिपुर में आपका स्वागत है। लॉर्ड नित्यानंद चीटेड मी, नित्यानंद मोरे वंचाई ला, नित्यानंद ने धोखा दिया। बोले नहीं नहीं धोखा नहीं दिया, गंगा और यमुना दोनों नदी मिलते हैं प्रयाग में, और जो पश्चिम दिशा में नदी आता है उसको बोलते हैं यमुना, पूर्व दिशा में गंगा, आपने पश्चिम दिशा में स्नान करा, आप मेरे घर चलो। सीता ठाकुर ने प्रसाद बनाया, प्रसाद खाने लगते हैं, महाप्रभु बोलते हैं थोड़ा सा मुझे दो राइस और लाफड़ा, लाफड़ा मालूम है? लाफड़ा, लाफड़ा खाया, लाफड़ खाया। लाफड़ा होता है मिक्स्ड वेजिटेबल्स, ये ना सन्यासी होते हैं सिंपल बॉयल वेजिटेबल, थोड़ा नमक और जीरे के साथ लाफड़ा। तो महाप्रभु ने थोड़ा लाफड़ा दो, थोड़ा सा, मैं ज्यादा नहीं लूँ, मैं सन्यासी। हाँ आप थोड़ा लोगे, आपने सन्यास क्यों लिया मैं जानता हूँ, आप कौन हो, द्वारका में आप कितना खाते हो, 16,108 पत्नियों के घर में, रोज हर एक के घर में कितना हो गया, जगन्नाथपुरी में कितना खाते हो, जगन्नाथ भवन का प्लेट क्या साइज का होता है, ये जगन्नाथ तो बहुत दयालु है कम खाते हैं, लेकिन पूरी वाले जगन्नाथ है वो कितना खाते हैं, है ना, तो पूरा सारा जितना बनता है सब किचन का जाते हैं। और आप नंद बाबा के घर खाते हो, नंद बाबा के चार भाई हैं उनके घर खाते हो, और सारे एल्डरली गोपी से घर खाते हो, जितना आप खा सकते हो उसकी तुलना में एक मुट्ठी है, चतुराई छोड़ो प्रसाद लो। हम आप लोग थोड़ा खाते हैं, अद्वैत और सर्व करे, नित्यान रोज साइड में बैठ के खाते हैं, बोलते ओ तीन दिन से फास्टिंग है, इतना थोड़ा प्रसाद है लगता है फास्टिंग ही चल रहा है अभी। तो अद्वैत आचार्य बोले देखो मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, अब जो मिल रहा है खा लो, अपना लोभी प्रवृत्ति त्याग दो। नित्यानंद प्रभु बोलते हैं देखो तुमने मेरे को घर में बुलाया है, मैं अपनी इच्छा से नहीं, जब किसी को घर में बुलाते हैं तो पेट भर के खिलाना तुम्हारा कर्तव्य होता है। तो अद्वैत आचार्य बोले तुमको पेट भर के खिलाना, तुम तो एक मन चावल खा लोगे 40 किलो, मैं कहाँ से ले आऊँगा, जो है लो। अब मेरे को मालूम है तुमने सन्यास क्यों लिया, तुम मेरे जैसे ब्राह्मणों को तकलीफ देने के लिए और अपना पेट भरने के लिए सन्यास लिया। तो दोनों इसको प्रेम से, एक्चुअली वो स्तुति कर रहे थे लेकिन गालियों के रूप में स्तुति कर रहे थे। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में गालियाँ भी स्तुति होती है, मेटेरियल वर्ल्ड में स्तुति भी गाली होती है। ऐसे बहुत देर तक लीला चलती रही और फाइनली नित्यानंद प्रभु बोले, अद्वैत आचार्य बोले, यू आर अ रिजेक्ट परमहंस, आप परमहंस लेकिन रिजेक्ट, उधर पोषण करी थे संन्यास को रील पेट भरने के लिए। फिर नित्यानंद प्रभु बोले ये चावल बेकार है, किसी का पेट तो भरना नहीं है। मैं चावल को उठा के जोर से जमीन पे फेंक दिया और जैसे जमीन से बाउंस होकर अद्वैत को टच किया, अद्वैत आचार्य एक्सेसी में आ गए, गाने लगे हरी 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 हरी, और बोले आई हैव बीन टच बाय द फूड ऑफ अ मैड मैन सो आई बिकम मैड, एक पागल का जूठा खा के मैं पागल हो गया। नित्यानंद बोले ये झूठा, ये तो भगवान का प्रसाद था, तुमने अपराध किया है, निंदा की प्रसाद की, अब प्रयाश्चित करो, घर में 100 सन्यासी को बुलाओ और सबको पेट भर के प्रसाद खिलाओ। अद्वैत बोले मैंने एक सन्यासी को बोला, देखा क्या हो गया, तुमको बुलाने के बाद और कोई सन्यासी को नहीं बुला, समय हो गया। लास्ट में सच्ची माता आती है अद्वैत आचार्य के साथ, महाप्रभु प्रणाम करते हैं और बोलते हैं हे माता आप मेरी माता हो, आपने मुझे भक्ति दी, आपने शरीर दिया, मैंने अनजाने में सन्यास ले लिया, अननोइंगली मैं पागल हो गया था, ये तरीका अगर घर में बताना हो, मेरे को पता ही नहीं था मैं कहाँ ज्वाइन हो गया है ना। महाप्रभु कैसे बता रहे हैं, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, अभी आप जो बोलो मैं करूँगा, आप बोलो वापस घर आ जाऊँ, अगर आना ही था तो पहले करना चाहिए था, लेकिन भगवान करने के बाद बोल रहे हैं वापस घर आ जाऊँ। तो मासी बोलते नहीं नहीं घर वापस मत आओ, लोग निंदा करेंगे, फिर मैं वृंदावन जाऊँ, नहीं नहीं वृंदावन मत जाओ बहुत दूर है, उस जमाने में कोई मोबाइल नहीं था, कोई मेल नहीं था, ऐसे पता नहीं चलता है कि mahaprabhu@vrindavan.com है ना। तो एक ही तरीका था मैसेज का, अगर वृंदावन जाना है मैसेज चाहिए तो यहाँ से पैदल कोई व्यक्ति जाएगा लेटर लेके, आप ऐसा करो वही कृष्ण जो वृंदावन में रहते हैं, वृंदावन चंद्र वही कृष्ण जगन्नाथपुरी में रहते हैं, पुरी में रहो। तो अपनी माता की आज्ञा पालन करके पुरी में रहने का निश्चय किया, और सच्ची माता ने सब भक्तों को बोला अब मेरे बेटे को मैं अभी देख रही हूँ, जब वो सन्यास लेके भ्रमण करने लगेंगे तो मैं कभी नहीं मिल पाऊंगी, आप तो मिलोगे मैं नहीं मिलूंगी, तो जितने दिन बचे हैं मैं अपने हाथों से प्रसाद बनाऊंगी। तो 10 दिन तक फेस्टिवल चलता रहा, सच्ची माता सबके लिए प्रसाद बनाते, सारे वैष्णव कथा सुनते दिन रात कृष्ण कथा, और उत्साह से गाते हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 राम। तो लोग दो मिनट आंख बंद करके प्रार्थना करें भगवान से कि हम सब भी, जैसे आज प्रभुपाद तात्पर्य में बोल रहे हैं कि हम भी अपने अपने वर्ण आश्रम में रहकर सन्यासी क्वालिटी बन जाए, कि हम वो जो महाप्रभु के गुण हैं सन्यासी के, त्रिनादपि सुनी छे न भाला न खाइब और कभी निंदा नहीं करना, ये गुण का पालन करते हुए सच्चे गौड़ीय वैष्णव सन्यासी बन सके। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। थैंक यू। कई कमेंट्स या ऑलरेडी टाइम लेट हो गया। जय श्री प्रभुपाद की जय।
माध्यम से जाएंगे। हरे कृष्ण।